أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سب لوگ؟ اوکے، لاسٹ ویک ہم لوگوں نے مرکب جاری کو شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مرکب جاری ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں حروف جارہ اور اسم حالت جر میں یہ دونوں چیزیں مل کر مرکب جاری بناتے ہیں. اس میں ہم نے کچھ حروف دیکھے تھے کہ جو ٹوٹل حروف جارہ ہیں وہ ان کی تعداد 17 ہیں، لیکن ہم نے جو اسٹڈی کرنے وہ 11 ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں 11 کا زیادہ استعمال ہوا ہے، جس میں سے ہم نے کچھ حروف جارہ کو دیکھا بھی تھا، جیسے با کے ساتھ یا ود کے میننگز میں آتا ہے، جیسے بالحق کی یا بالقلم یا بسم اللہ، اور اسی طرح تا قسم کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، اور یہ اسپیسیفائڈ ہے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانے کے لیے، جیسے طلّہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے سورہ یوسف میں. اور پھر واؤ قسم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قسم اٹھانے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اور باقی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. لیکن یہاں پر میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی تخلیق کی ہوئی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی قسم اٹھا لیں. جہاں تک ہم انسانوں کی بات ہے تو ہم قسم اٹھاتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا سکتے ہیں، ہم باقی جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزیں ان کی قسم نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے، آج ہم نیکسٹ انشاءاللہ فورتھ ون دیکھتے ہیں جو ہمارا حرف جار ہے. کا تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جیسے مانت کہا جائے یا لائک جیسا کی طرح، ان سارے میننگز میں یہ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، لیٹر استعمال ہوتا ہے، یہ بھی حرف جار ہے. اور جیسے آپ کسی کو کہو چاند کی طرح، تو چاند کے لیے ہم عربی میں القمر کا ورڈ یوز کرتے ہیں، تو کل قمری چاند کی طرح. اور اس کی جو مثال ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے سورۃ الفیل میں، فجعلہم کعصف مأکول، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوسے کی طرح بنا دیا. تو یہاں پر بھی جیسے جو اصحاب الفیل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جب نیست و نابود کیا تو اس وقت ان کو تشبیہ دی گئی کہ وہ جب وہ مرے ہوئے بالکل زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے تو وہ بالکل ایسے تھے جیسے آپ کوئی بھی کھیت، کوئی بھی آپ زراعت کرتے ہو گندم یا کچھ بھی، تو اس کے بعد جو اس کا ایکسٹرا مٹیریل بچ جاتا ہے، بھوسا بچ جاتا ہے، بالکل اس کی طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو کر دیا. تو یہاں پر بھی جو کا ہے یہ مانت استعمال ہوا ہے کہ بھوسے کی طرح. اور پھر آپ ایک اور چیز نوٹ کر سکتے ہیں، جیسے حرف جارہ کا جو اسم کے اوپر ایک افیکٹ ہوتا ہے وہ کیا، کہ وہ اس کو مجرور کر دیتا ہے. تو کیا اسپن کھولن، یہاں پر یہ دونوں اسپن کھولن یہ ہمارے پاس مرکب توصیفی ہے، اور کا اسپن یہ ہمارے پاس مرکب جاری آ رہا ہے. پھر اسی طرح ایک اور ایگزامپل آتی ہے اس کی سورۃ القاریہ میں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ قیامت کے دن کی مثال ہے کہ اس دن لوگ کیسے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے. تو الفراش المبثوث یہ پھر صفہ موصوف آ گیا مرکب توصیفی، اور کل فراش حرف جار اور اسم ہے اس کے ساتھ جو کہ مجرور ہے، تو یہ کل فراش جو ہے یہ مرکب جاری ہو گیا ہمارے پاس کہ وہ پتنگوں کی مانند ہے بکھرے ہوئے المبثوث. ٹھیک ہے، اب یہ تو جیسے کہ ہمارے پاس اگر حرف جار کے بعد کوئی بھی اسم سنگولر فارم میں آتا ہے تو نارملی اگر وہ کسرہ قبول کرنے والا ہے تو وہ مکسور ہی آئے گا، तो अगर वो तस्निया या जमा की फॉर्म में आता है तो फिर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने जो तस्निया और जमा की कसरा फॉर्मेशन हमने देखी थी जब हम अदब के एतबार से इसको पढ़ रहे थे इस्म को, तो उस तरह से हमने फॉर्मेशन करनी है। जैसे अगर हम एक लफ्ज को ले लें अल मुजरिम, तो अगर हम इसको मुफ्रद की फॉर्म में का के साथ ऐड करेंगे तो कल मुजरिमी जो वाहिद है वो कसरा जो है इसकी शो कर रही है कि ये हालत जर में है। फिर अगर तस्निया में हम तस्निया अल मुजरिमान के साथ हम का को ऐड करेंगे तो कल मुजरिमैनी, फिर यहाँ पर जो एंड में यानून और यानून से पहले फतहा ये हमें डिफाइन कर रही है कि ये हालत जर में है। और अगर हम अल मुजरिमून से बिफोर का को ऐड करें तो कल मुजरिमीना यानून, और उससे पहले जो कसरा है यानून से पहले कसरा ये हमें डिफाइन कर रही है कि ये अल मुजरिमीन जो है वो हालत जर में है। और कल मुजरिमीन का लफ्ज हमें कुरान मजीद में भी मिलता है कि अफनजालुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, कि क्या हम मुसलमानों को मुजरिमों की तरह बना दे, मालकुम कैफ तहकुमून, कि तुम लोग किस तरह की बातें करते हो, किस तरह के तुम लोग फैसले करते हो। तो फिर इसमें हमने तस्निया और जमा की फॉर्मेशन में ध्यान करना होगा कि हम उसको हालत जर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक, फिर जो नेक्स्ट लेटर है हमारे पास हर्फ जार, वो ली इस्तेमाल होता है और ली के लिए या फॉर के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि किसी भी चीज को कहते हैं कि ये फलां बच्चे के लिए है, तो वहां पे बच्चे का वर्ड जैसे वलद के तौर पर आता है तो लिल वलदी, या अल्लाह ताला ने जैसे कुरान मजीद में बहुत दफा अजाब का जिक्र कुफार के साथ किया है तो काफिरों के लिए, उसके लिए फिर लिल काफिरीना, या लोगों के लिए ये भी लफ्ज हमें कुरान मजीद में मिलता है तो लिल नासी, और मुत्तकियों के लिए तकवा वालों के लिए, जैसे जन्नत को अगर अल्लाह ताला उसकी तरफ नस्बत करते हैं, या कोई भी जो चीज है हम जब किसी के लिए इस्तेमाल करें या मुत्तकियों के लिए तो लिल मुत्तकीना। और फिर यहाँ पर भी हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम लिल मुत्तकून नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुत्तकून जो है वो हालत रफ है, तो हमें उसमें फिर उसकी हालत जर को साथ में लेकर आना है ली के, क्योंकि ली हर्फ जार है और वो अपने बाद में आने वाले इस्म को कसरा दे देता है, लिल मुत्तकीना। ठीक है, अब ये जो ली है ये के लिए भी इस्तेमाल होता है जैसे, और दूसरा इसका जो मीनिंग है एक वो मिल्कियत के तौर पर भी, क्योंकि लाजमी नहीं है कि कोई चीज अगर किसी के लिए है तो वो उसका मालिक भी है। जैसे बहुत सारी चीजें हमारे लिए होती हैं लेकिन हम उसके अल्टीमेट मालिक नहीं होते। वो हो सकता है आपको किसी इंस्टीट्यूट ने कुछ चीजें दी हो या किसी और पर्पस के लिए आपके पास हो, लेकिन वो आपकी मिल्कियत नहीं होती। बार दफा ऐसे हमें सिचुएशन मिलती है। तो जैसे अब अगर कोई भी चीज किसी के लिए होगी और वो उसकी मिल्कियत भी होगी तो उस वक्त जो लाम इस्तेमाल करेंगे हम ये ली वाला, तो वो लाम तमलीक होगा, वो लाम मिल्कियत के लिए होगा। जैसे कुरान मजीद में हमें इसकी मिसाल मिलती है कि लिल्लाही खजाइनु समावाती वल अर्द, कि अल्लाह ताला के लिए खजाने नहीं है बल्कि अल्लाह ताला के हैं, यानी अल्लाह ताला उसके मालिक हैं। जो भी खजाइन जमीन और आसमान के अंदर है वो अल्लाह ताला उसके मालिक है। तो यहाँ पर जो लिल्लाही में ली इस्तेमाल हो रहा है वो मिल्कियत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे हम लाम को लामे तमलीक बोलेंगे। है ये हर्फ जर ही, लेकिन बार दफा ली जो है वो के लिए या फॉर के मीनिंग्स में आता है और बार दफा तमलीक के लिए, और ये फिर आपको कॉन्टेक्स्ट बताता है कि ये लाम किस पर्पस के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है। और इसी तरह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, कि यहाँ पर हम ये तर्जुमानी करेंगे कि अल्लाह ताला के लिए है जो आसमान और जमीन में, बल्कि अल्लाह ताला का है जो जमीन और आसमान में है, यानी अल्लाह ताला उसके मालिक हैं। ठीक है, फिर जो हमारे पास नेक्स्ट सिक्स्थ वन आ रहा है हर्फ जर, वो फी है, और फी मे के मीनिंग में आता है इन। जैसे किसी किताब में तो फी किताबिन, और या किसी स्पेसिफिक किताब की तरफ अगर आप इशारा कर रहे हो तो फिल किताबी, और जन्नत में फिल जन्नती, और जहन्नम जहन्नम में को अगर हम हर्फे जर के साथ इसको मरकबे जारी बनाएंगे तो फी जहन्नमा। और यहाँ पे फिर हमें जो हमारा एक स्टार्ट वाले लेसन है उनको अपने साथ लेके चलना है कि जो जहन्नम है वो फतहा के साथ नहीं आता, वो हालत जर में भी, सॉरी कसरा के साथ नहीं आता, हालत जर में, हालत जर में भी फतहा के साथ ही आता है, क्योंकि जहन्नम जो है वो गैर मुनसरिफ अस्मा के अंदर आता है, तो इस वजह से हम इसको फी जहन्नमा कहेंगे। और यहाँ पर हमें ऑल्दो जहन्नम जो है वो फतहा के साथ आ रहा है, लेकिन हमें ये बात पता है फी की वजह से कि यहाँ पर ये हालत जर में है, क्योंकि जो एराब होते हैं, जो हरकत होती है वो असल में एराब को जाहिर नहीं कर रही होती, तो एराब डिफरेंट चीज है हरकत से। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हर्फे जार है वो मिन और आन है, और ये दोनों एक ही मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं, से या फ्रॉम के लिए, लेकिन मिन का जो एक मेन जिसलिए इस्तेमाल होता है, यानी जब आप किसी भी फेल को स्टार्ट करने लगते हैं तो उसके लिए हम मेन इस्तेमाल करते हैं, और आन थोड़ा सा उससे डिफरेंट मीनिंग में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है। तो हमारे पास कुरान मजीद में मेन और आन लिखे हुए आएंगे तो इसकी ट्रांसलेशन के लिए हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा मुताला मांगती है कि अगर आप बहुत मेन कुरान को एक कुरान मजीद में उसको देखें और फिर आपको पता चले कि मेन कुरान कैसे डिफरेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए हम उसकी ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे कि हम उसकी फॉर्मेशन करें उर्दू से अरबी में। तो हमारे पास कुरान मजीद में जिस तरीके से आ रहे हैं हम सिर्फ उसी तरीके से इसको करेंगे, और मेन और आन दोनों से के मीनिंग में आते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल में थोड़ा सा फर्क आ जाता है जब आप इसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं उर्दू से या किसी भी जबान से अरबी में। तो जैसे कुरान मजीद में अगर हम इसकी कुछ मिसालें देखें तो जैसे मिन मक्का था, मक्का से, और यहाँ पे भी आप देखें कि मक्का चूंकि गैर मुनसरिफ आसमान से आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर मक्का कसरा के साथ नहीं आएगा, हम यहाँ पर मिन मक्का था फतहा के साथ ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है कि मक्का यहाँ पर हालत जर में है इसलिए क्योंकि हर्फ जार उससे बिफोर आ रहा है, और मिनल मदीना थी मदीना से, फिर इसी तरह जैसे आन है तो हमें अहदीस में ये आन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मिलता है, कि आन आयशा था, आन अबी बकर, आन अबू हुरैरा, अबी हुरैरा, तो वहां पर फलाने फलां से रिवायत किया, तो वहां पे जो से के मीनिंग में हमें अरबी का लेटर मिलता है वो आन मिलता है, हर्फ मिलता है। और इसी तरह आन की मिसाल अगर हम कुरान मजीद में से देखें तो हमें एक आयत में मिलती है कि इन सलात तनहा अनिल फहशा इवल मुनकर, कि बेशक जो नमाज है वो हमें बेहयाई और बुराई से बचाती है। तो यहाँ पर जो से है वो उसके लिए यहाँ कुरान मजीद में आन का इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पे एक छोटा सा रूल आपको मैं बताती चलूँ कि कभी भी किसी भी साकिन लेटर को अगर हमने आगे मिला के पढ़ना हो तो उसका क्या कायदा है, क्योंकि हमारे पास मिन और आन ये दोनों इनके जो नून है वो हमारे पास साकिन है, तो उनको अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे, तो तो एक जो आम कायदा है वो क्या है कि अगर हमें कोई भी साकिन लेटर मिलता है तो हमने उसको हमेशा जेर देके नेक्स्ट वर्ड के साथ मिला के पढ़ना है। जैसे अगर आन हमारे पास आ रहा है तो आनिल फहशाई नून को हमने कसरा के साथ देके पढ़ना है, या कोई भी हमारे पास साकिन लेटर आ रहा है कुरान मजीद में और हमने उसको नेक्स्ट वर्ड के साथ मिला के पढ़ना है। तो ये एक आम कायदा है कि आपने सेकंड जो साकिन लेटर है उसको कसरा देनी है आगे वाले लफ्ज के साथ मिलाने के लिए। लेकिन जो मिन है वो एक्सेप्शन में है कि मिन की जो नून है उसको हम फतहा देके नेक्स्ट वाले वर्ड के साथ मिलाते हैं। यानी जो आम कायदा क्या है कि किसी भी साकिन लेटर को आपने जब नेक्स्ट वर्ड के साथ मिलाना हो तो आप उसको कसरा देंगे, लेकिन मिन एक्सेप्शन के साथ है कि मिन का जो नून साकिन है उसको हमने फतहा देके नेक्स्ट वर्ड के साथ मिलाना है। जैसे मिनल मदीना थी, यहाँ पे हम मिनिल मदीना नहीं बोलेंगे बल्कि नून को फतहा के साथ बोलेंगे, क्योंकि मिन एक वर्ड है जो कि इस कायदे की एक्सेप्शन है। मिनल मदीना थी नून को फतहा के साथ, और आन को अगर हम कभी भी मिला के पढ़ेंगे तो आने फहशाई या किसी भी और अगर जुमले में आएगा तो नून को हमने कसरा के साथ नेक्स्ट वर्ड के साथ मिलाना है। जैसे एक फॉर्मेशन अगर हम देखें अल्लाह ताला की याद, तो ये हमारे पास अल्लाह ताला की याद मुरकबे इजाफी आ रहा है जिक्रुल्लाही। तो इसके अगर शुरू में हम लगाएंगे तो हम आन लगाएंगे अल्लाह की याद से आन जिक्रिल्लाही, जैसे कुरान मजीद में भी आता है कि दिलों को सुकून अल्लाह ताला की याद से मिलता है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट हर्फे जार है वो इला है, और इला तक या तरफ की तरफ के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। जैसे मक्का से मदीना तक, तो मिन मक्का था इलन मदीना थी। फिर घर से मस्जिद तक मिनल बैती इलन मस्जिदी। यहाँ पर यानी जिस इस्म के साथ हम तक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ फिर हमने जो हर्फ जर इस्तेमाल करना है वो इला का इस्तेमाल करना है। या फिर हम अगर ये कह दें कि मस्जिद से घर तक तो मिनल मस्जिदी इलल बैती। फिर हमारे पास जो अगला हर्फ जार है वो है आला। आला का मतलब होता है पर, ऑन या एट के मीनिंग्स में आता है। जैसे सूरत आयतुल कुर्सी में हमें मिलता है आलल कुर्सी। सॉरी, ये फॉर्मेशन आयतल कुर्सी में नहीं आती, लेकिन अगर हम कुर्सी को कहें कि कुर्सी पर, तो आलम कुर्सी ही उसका जो मरकबे जार बनेगा हमारे पास। और इसी तरह जैसे अल्लाह ताला के लिए आता है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर इस्तवा है, तो आलल अर्शी अर्श पर जो हमारा मरकब बनेगा वो बनेगा आलल अर्शी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट और आखिरी हर्फे जा है वो हत्ता है, हत्ता तक या तिल के मीनिंग में आता है। और इसका इस्तेमाल हर्फे जर के तौर पर हत्ता का इस्तेमाल कुरान मजीद में थोड़ा कम है। जैसे हमें इसकी मिसाल सूरतुल फजर में मिलती है कि जैसे लैलतुल कदर का कहा जाता है कि वो फजर के फूटने तक उसका जो टाइम है वो रहता है, तो वहां पे क्या हमें अल्फाज मिलते हैं या हत्ता मतलाई फजरी। तो यहाँ पे भी फिर मैं आपको वही वाली बात बताऊंगी जो वाव कस्मिया में मैंने आपको बताई थी कि आम वाव और वाव कस्मिया में हम डिफरेंस किस तरह करेंगे कि जो वाव अपने बाद आने वाले इस्म को कसरा दे रहा है, मकसूर आ रहा है उसके बाद में इसम, तो वो वाव हमारे पास वाव कसम होगा। और अगर वाव अपने बाद में आने वाले इसम को मकसूर नहीं कर रहा, कसरा नहीं दे रहा, मजरूर नहीं कर रहा, तो फिर वो जो वाव है वो और के मीनिंग में इस्तेमाल होगा। तो यहां पर भी हम आम हत्ता में और हर्फे जार वाले हत्ता में किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो हर्फे जार वाला मरकबे जारी होगा उसमें वो अपने बाद वाले इसम को कसरा दे रहा होगा, जैसे हत्ता मतलाई फजरी, मतलाई फजर हमारे पास मरकबे इजाफी आ रहा है और हत्ता उससे बिफोर अपने बाद में आने वाले इसम को कसरा दे रहा है, मजरूर कर रहा है, तो ये यहाँ पर हर्फ़े जर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब एक आखिर में एक पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लिख लें कि जो तमाम हमने अभी हुरूफ़े जारा पढ़े हैं, ये तमाम हुरूफ़े जारा इनमें से बाज दफा तो ये प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और बाज दफा नहीं होते, तो इसमें अगर अगर तो ये हुरूफ प्रपोजिशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रपोजिशन के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनका मानी तर्जुमा करते हुए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और अगर ये हर्फ जर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर इनके वही मीनिंग्स रहते हैं जो मैंने आपको भी इनके साथ साथ बताती गई हूँ। तो इसकी मैं इस मिसाल आपको एक देती हूँ, जैसे भी के यहाँ पर हम जो बा का तर्जुमा है वो के साथ नहीं करेंगे, यानी वो गैब के साथ ईमान लाए नहीं बल्कि गैब पर ईमान लाए, क्योंकि यहाँ पर जो बा है वो एज अ प्रिपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। और इसकी मिसाल हमें अगर हम इंग्लिश जबान को देखें या उर्दू को देखें तो इसमें भी हमें मिलती है कि बाज दफा कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो कुछ वर्ब्स के साथ स्पेसिफाइड होते हैं, जैसे अगर हम देखें टू लुक देखना, लेकिन लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है, देखभाल करना, लुक इन टू गौर फिक्र करना, या लुक फॉर तलाश करना। तो अब लुक अगर हम एक वर्ब को देखें तो वो अकेला सिर्फ देखने के मीनिंग में आता है, लेकिन आफ्टर इंटू या फॉर जो उसके बाद में आ रहे हैं ये लेटर्स, तो ये लुक के मीनिंग को बिल्कुल बदल रहे हैं। तो इसी तरीके से जब हमारे पास एक वर्ब के साथ मिलके कोई भी हर्फ जार आता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग देता है, और ये फिर आप लोगों को कुरान का मुताला करने के बाद पता चलता है कि किसी वर्ब के साथ किसी भी वर्ब के साथ जो लेटर्स हैं वो बाज दफा स्पेसिफाइड होते हैं, जैसे युमिनूना बी है, तो अब युमिनूना की कोई भी फॉर्म होगी उसके साथ में जो हर्फ जार है वो बी ही आएगा, जैसे आमंतु बिल्ला ही है, तो यानी जो वर्ब आमना है आप उसका अगर रूट वर्ड देखें तो उसके साथ में बा हमेशा आता है और वो फिर ईमान लाने के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अगर हरूफ जार के साथ हमें किसी भी फेल के साथ जब हमें हरूफ जार मिलते हैं और वो एज अ प्रपोजिशन वर्क कर रहे होते हैं तो वो थोड़े से डिफरेंट मीनिंग देते हैं। जैसे इसकी एक और मिसाल है कि आऊज़ बिल्ला ही, कि यहाँ पर जैसे हमने बा का जो मीनिंग है वो साथ या विद के पड़ा, तो लेकिन यहाँ पे आउजु बिल्लाही, यहाँ पर जो आउजु का फेल है उसके साथ में ये बा आ रहा है, यानी एज अ प्रपोजिशन यहाँ पर यूज हो रहा है, तो अल्लाह की पनाह में आती हूं मैं, इसका मीनिंग हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पर भी हम विद के साथ या साथ के साथ में बा का तर्जुमा नहीं करेंगे। और इसी तरह जो सूरत फील में आ रहा है हमारे पास अलम थरके फ़ाला रब्बू का बी अस्हाबिल फील, तो यहाँ पर जो बी है वो साथ के मीनिंग में आ रहा है, यहाँ पे जो हमारे पास बी है वो हर्फे जार की यानी एज अ प्रपोजिशन नहीं यूज हुआ, यहाँ पे साथ के मीनिंग में हम यहाँ पे इसका तर्जुमा करेंगे। अब हम कुरान मजीद में से कुछ मिसालें देख लेते हैं जो कि हुरूफ़े जार से रिलेटेड हमें मिले। तो इसमें आप सूरतुल नहल को खोलें, 14th पारा में है। फिर हम इसमें से कुछ मिसालें देख लेते हैं। सूरतुल नहल 14th पारा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمه بس آية نمبر 2 میں مثال آ رہی ہے، ينزل الملائكة بالروح. کہ اللہ تعالیٰ ينزل الملائكة، کہ فرشتے اترتے ہیں، بالروحی روح کے ساتھ. और यहाँ पर जो रूह है वो वही के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो हर्फ जार है वो साथ के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे एज अ प्रपोजिशन नहीं यूज हुआ, किसी फेल के बाद नहीं आ रहा, इस वजह से हम यहाँ पर इसके जो मीनिंग है वो साथ के इस्तेमाल करेंगे कि फरिश्ते उतरते हैं रूह के साथ, यानी वही के साथ। मिन अमरी, यहाँ पे मिन इस्तेमाल हो रहा है जो हमने देखा था कि हर्फ़े जार है, और ये मिन अमरी, अमर को उसने कसरा दे दी मिन में। फिर आला मैं यशा, मिन इबादी ही, मिन यहाँ पे भी हर्फ़े जार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मिन इबादी ही मरकबे जारी है। फिर इसके बाद हमारे पास एक मिसाल आ रही है आया नंबर 3 में, खलक السماوات والارض بالحق، بالحق भी मरकबे जारी है। आया नंबर 4 में भी हमें एक मिसाल मिलती है, खलक الانسان من نطفة، नुतफे से, ये भी मरकबे जारी है। फिर इसके बाद हम देखें آية نمبر 7 میں، وتحمل أثقالكم إلى بلد، إلى بلد، یہ بھی ہمارے پاس مرکب جاری آ رہا ہے، اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اسم نیکسٹ آ رہا ہے حرف جر کے بعد وہ مجرور ہے. پھر آیا نمبر 9 کے بالکل شروع میں، وعلی اللہ، یہ بھی ہمارے پاس علی اللہ مرتب جاری آ رہا ہے. آیا نمبر 10 میں، هو الذی انزل من السماء، من السماء مرتب جاری. پھر آیہ نمبر 12 میں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، بِأَمْرِهِ، یہاں پر ہمارے پاس مرکب جاری آ رہا ہے بِأَمْر. یہیں تک ہم ان کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں قرآن مجید میں. اب ہم کچھ احادیث دیکھتے ہیں جس میں ہمیں مرکبے جاری ملیں گے. جیسے ایک بہت مشہور حدیث ہے، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. تو اس اگر حدیث کو ہم لکھیں تو من خرج فی طلب العلم، یہاں پہ ہمیں فی حرف جار مل رہا ہے، اور اس کے بعد طلبی جو اسم آ رہا ہے وہ حالت جر میں ہے، اور فی طلب العلم، طلب العلم کو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ ہمارے پاس مرکب ہے، اور مرکب مرکب اضافی ہے. تو فی طلبی، طلبی کو کسرہ مل رہی ہے، حالت جر میں جا رہا ہے وہ، کس کی وجہ سے؟ حرف جار کی وجہ سے. और तलब इल्मी, अल-इल्म जो है वो हालत जर में जा रहा है, किस वजह से? क्योंकि वो मुदाफ इलई है। तो यहां मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो इस्म है उसके हालत जर में जाने की दो ही वजूहात होती हैं, और वो एक ये कि या तो उससे पहले हालत हरफे जार आ रहा हो, और या फिर वो मुदाफ इलई हो। तो ये दोनों वजह आपको पता चल गई कि कोई भी इस्म क्यों हालत जर में जाता है, या तो वो मुदाफ इलई होता है और या फिर वो मुरक्कबे जारी में इस्तेमाल हो रहा होता है, उससे पहले हर फिर आ जाए तो फिर वो इसम हालत जर में चला जाता है। फी तलब इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाही, हुआ हम दमीर में पढ़ चुके हैं इसको, और फी सबीलिल्लाही यहाँ पे फिर हमारे पास एक मुरक्कबे जारी की मिसाल आ रही है, फी में सबीली रास्ते में, ये मरकबे जारी है हमारे पास, और सबीलिल्लाही ये हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है ये मरकबे इजाफी की है, सबील मुदाफ है और अल्लाह ही मुदाफ इले, और यहाँ पे भी सेम जो हालत है वो पिछली वाली तरकीब के जैसी है कि फी के बाद जो सबील है वो हालत जर में चला गया क्योंकि उससे पहले हरफे जार है और अल्लाह ही हालत जर में है क्योंकि वो मुदाफ इले है, फी सबीलिल्लाही। इसी तरह एक और हदीस है, तलबुल्लैनी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, यहाँ पे जो हमारे पास मुरक्कबे जारी की कंस्ट्रक्शन आ रही है वो है अला कुल्ली मुस्लिम, अला हरफे जर और कुल्ली मुस्लिम, जैसे हमने मरकबे इजाफी जब पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि कुल के साथ जब इसम की कोई फॉर्मेशन बन के आती है तो उसको भी हम मरकबे इजाफी के अंदर शामिल करते हैं, तो कुल्ली मुस्लिम ये हमारे पास मरकबे इजाफी है, और इससे पहले जब आला आ गया तो आला ने कुल को हालत जर में ले गया क्योंकि कुल इसम है और इससे पहले हरफ जर आ गया, और मुस्लिम हालत जर में चला गया क्योंकि ये यहाँ पर मुदौफ इलाही है। ठीक है, ये हमारे पास मुरक्कबे जारी की मिसालें हो गई कि अगर तो हरफ जर के बाद कोई भी इसम आता है तो वहां पर जो हमारी मुरक्कब की किस्म बनती है वो मुरक्कबे जारी बनती है, और फिर यहाँ पे एक हरफ जारा ही से रिलेटेड एक लास्ट पॉइंट है, और वो ये कि हरूफ जारा जो है उनमें से कुछ हरूफ दमायर के साथ भी मिलकर आते हैं, तमाम नहीं, कुछ हरूफ जो है वो दमायर के साथ मिलकर आते हैं। जार अपने बाद आने वाले इस्म को हालत जर में ले जाते हैं, तो इसलिए जो हम दमायर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दमायर भी अस्मा ही की अकसाम में आते हैं, अस्मा ही के टॉपिक के अंदर आते हैं, तो जो हमने दमायर इस्तेमाल करने हैं जो हमारे हुरूफ इजारा के बाद आएंगे वो हमने वही स्पेसिफिक दमायर इस्तेमाल करने हैं जो कि हालत जर वाले हैं, यानी इससे पहले भी हम उनको मुदाफ इले की कंस्ट्रक्शन में देख चुके हैं कि जो दो टेबल्स मैंने आपको भेजे थे उनमें से एक हालते रफ वाला था और दूसरा हालते नसब और हालते जर वाला था, तो हमने जो सेकंड टेबल है वही यूज किया था, हालते नसब और हालते जर वाला, क्योंकि मुदाफिले भी हमारे पास मजरूर होता है और वहां पर जो हमारे दमायर थे वो मुदाफिले के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे, और इस वाले मुरक्कब में चूंकि इसम जो हरफ जारा के बाद जो इसम आता है वो भी हालत जर में होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी जो हमारे दमायर हैं वो हम सिर्फ हालते जर वाले ही इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ी से दमायर के टेबल को मैं रिवाइज कर देती हूँ कि जो हमने हालते रफ वाले दमायर पढ़े थे उनका टेबल क्या था, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, ये जो टेबल है ये हालते रफ वाला है, और जो दूसरा टेबल हमने किया था वो हालत नसब और हालत जर वाला था। हालत जर वाला और हालत नसब वाला मैं अभी बताती हूँ आपको। हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। ठीक है, अब इसमें हम जो हमने 7 लेटर्स देखे हैं हरूफ जार, उनको हम साथ में लिख के देखेंगे कि क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं। क्योंकि जैसे हम जब हमने वो मुरकबे इजाफी के साथ हमने देखा था दमायर का इस्तेमाल, तो उस वक्त मैंने आपको कुछ बातें बताई थी वाहिद मुसक्कर गायब से रिलेटेड, और इसी तरह हुमा हुम हुन्ना से रिलेटेड के कुछ हरकात में उनकी चेंजिंग्स आती हैं, और इसी तरीके से जो याए मुतकल्लिम है उसके भी इराब में कुछ चेंजिंग्स आती हैं। क्योंकि याए मुतकल्लिम की एक बात होती है कि वो हमेशा उसकी डिमांड होती है कि जो भी उससे प्रीवियस लेटर हो वो कसरा के साथ आए, तो समटाइम्स कुछ हरूफ कसरा के साथ आते हैं कुछ नहीं आते। तो इस सारी डिटेल्स के लिए हम वन बाय वन ये जो 7 लेटर्स मैंने आपको बताए हैं जिनका के दमायर के साथ इस्तेमाल आता है, तो वो हम देखेंगे कि उनके अराब में उनकी हरकात में क्या चेंजिंग्स आती हैं। सबसे पहले हमारा बी हर्फ जार है, उसको हम हालत जर के जो टेबल है उसमें तमाम में साथ अटैच करके देखते हैं। कि हमने देखा था कि अगर तो कसरा आ जाए वाहिद मुजक्कर गायब से पहले वाले लेटर पे, तो हम जो वाहिद मुजक्कर गायब है उसको खड़ी जेर के साथ पढ़ते हैं। तो जैसे बी है कसरा के साथ है तो बी ही यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, और जो वाहिद मुजक्कर गायब की दमीर है वो यहाँ पर खड़ी जेर के साथ होगी बी ही। फिर हुमा हुम और हुन्ना, इन तीन के लिए मैंने आपको ये बताया था मुरकबे इजाफी वाले टॉपिक के अंदर ही कि जब कसरा आ जाती है हुमा हुम और हुन्ना इन तीन दमायर से बिफोर जब हमें कसरा मिल जाए तो फिर ये हुमा हुम और हुन्ना हिमा हिम और हिन्ना में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास बीहिमा बीहिम और बिहा जो मोनस की दमीर है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो हा है और वो हा ही रहती है। बिहा बिहिमा बिहिन्न बिका बिकुमा बिकुम बिकी बिकुमा बिकुन्न बी और ना। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास बा पे ऑलरेडी कसरा है और याए मुतकल्लिम की डिमांड पूरी हुई हुई है, इसलिए बी और ना ये इसके दमाए की सूरतें होगी बा के साथ जब दमाए मिलकर आएंगे हालत जर वाले। ओके, अब हमारे पास जो दूसरा लेटर है वो लाम है ली। तो यहाँ पर हमारे पास अगर तो कोई भी इसम होगा इसम जाहिर यानी जो नेम्स हैं जो अस्मा हैं वो जब हमारे पास आएंगे लाम के साथ मिलके तो लाम उस वक्त कसरा के साथ होगा, और अगर यही लाम ये जो हमारे पास लाम आ रहा है हर्फ जार वाला ये जब किसी दमीर के साथ मिलके आएगा तो उस वक्त ये लाम कसरा के साथ होगा सॉरी फतहा के साथ होगा। यानी ऑपोजिट है कि अगर तो हमारे पास जो अस्मा है जैसे जईद वलद जो दमायर के अलावा अस्मा हमारे पास आ रहे हैं, दमायर भी अस्मा ही की कैटेगरी में है लेकिन हम सिर्फ इस चीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि लाम कब फतहा के साथ आएगा और कब कसरा के साथ। तो इससे पहले जो हम लाम को पढ़ा हमने और उसमें जो हमने एग्जाम्पल्स देखी है जैसे लिल वलदी लिल काफिरीना लिल नासी लिल मुत्तकीना, तो इन सारे अस्मा के साथ हमारे पास लाम कसरा की हालत में आ रहा था, लेकिन जब यही लाम दमायर के साथ मिलकर आएगा तो फिर ये फतहा के साथ आएगा। जैसे जो हमारा अभी हालत जर वाला टेबल है अगर उसमें हम लाम को अटैच करें तमाम दमायर के साथ, तो हमारे पास क्या उसकी सूरत होगी? लहू, वाहिद मुज़क्कर गायब की दमी के साथ, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लखा, लखुमा, लखुम, लखी, लखुमा, लखुन्ना और ली और ना लना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो तमाम दमायर हैं उनके साथ जब लाम का इस्तेमाल होगा हरफे जार वाले का, तो उस वक्त लाम फतहा के साथ होगा, लेकिन याए मुतकल्लम में फिर उसको जेर मिलेगी क्योंकि वो याए मुतकल्लम की डिमांड पूरी कर देता है। और याए मुतकल्लम की क्या डिमांड है कि मुझसे पहले वाले लेटर पे कसरा होनी चाहिए। तो तमाम दमायर के साथ हमारा जो लाम है वो फतहा के साथ आएगा, जबर के साथ आएगा, मा सिवाय याए मुतकल्लम के। याए मुतकल्लम के साथ जब आएगा तो वो कसरा के साथ आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट आप ऐड कर लें याए मुतकल्लम के हवाले से कि याए मुतकल्लम के ऊपर बाज दफा तो सुकून आता है और बाज दफा इसके ऊपर जो हरकत आती है वो फतहा की आती है। चूंकि अरबी जबान ऐसी जबान है जो कि जबान की सहूलत के एतबार से बहुत बार इसके एराब में, या हम कह सकते हैं हरकत में, चेंजिंग्स आ जाती हैं, तो इसकी मिसालें हमारे पास पहले भी आई हैं जो हम पढ़ चुके हैं उसमें भी आई हैं, और यहाँ पे भी हमें जो याए मुतकल्लम की सुकून और जबर है वो क्यों आनी चाहिए, वो किसी रूल के तहत नहीं है बल्कि वो इसी तरीके के ऊपर बेस करती है कि जहां पर जबान को सहूलत होगी सुकून में वहां पे सुकून होगा, और जहां पर जबर होगी वहां पर जबर बोलना इजी फील होगा वहां पे याए मुतकल्लम जबर के साथ आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास दो मिसालें, दो हमने लेटर्स कर लिए बा और लाम का। अब हमारे पास जो थर्ड वन है वो फी है, तो फी को अगर हम इसी चार्ट में फिट करें जो हमारे पास दमायर का है, तो इसमें वाहिद मुज़क्कर गायब की जो दमीर है उससे बिफोर अगर या साकिन आ जाए, तो हमने ये पढ़ा था कि जो वाहिद मुज़क्कर गायब की दमीर है वो सिर्फ कसरा के साथ इस्तेमाल होती है, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन बनेगी हा के साथ मिलके फी की, वो फी ही, जैसे ला रैब फी ही हुदल लिल मुत्तकीन, हमें सूरतुल बकरा में इसकी मिसाल मिलती है कि जो फी ही में हा है वो हमें सिर्फ कसरा के साथ मिल रहा है क्योंकि उससे पहले हमें या साकिन मिल रही है। और इसी तरह हमने ये भी चीज देखी थी कि या साकिन अगर हुमा, हुम और हुन्ना से बिफोर आ जाए या साकिन, तो हुमा, हुम और हुन्ना हिमा, हिम और हिन्ना में चेंज हो जाते हैं, तो फी ही, फी हिमा, फी हिम, फी हा, फी हिमा, फी हिन्ना, फी का, फी कुमा, फी कुम, फी की, फी कुमा, फी कुन्ना। अब जो याए मुतकल्लम है अगर हम उसके साथ फी को ऐड करें, तो फी जिसमें फा के बाद याए साकिन होगी, और जो याए मुतकल्लम है मैंने अभी जैसे अभी आपको उसका बताया कि या तो याए मुतकल्लम के ऊपर सुकून की अलामत होती है और या फतहा की होती है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फी में दो लेटर्स हैं, फा कसरा के साथ, फिर उसके बाद या साकिन, और उसके बाद याए मुतकल्लम, या तो वो सुकून के साथ होगी और या फतहा के साथ होगी। तो इसमें हमारे पास एक कायदा है जिसमें हम हमारा जब सेम लेटर यानी चूंकि इसमें हमारे पास या साकिन डबल बार आ रही है, फा कसरा के साथ है फिर या साकिन है और फिर उसके बाद याए मुतकल्लम है जो समटाइम्स या तो सुकून के साथ होती है और या फतहा के साथ होती है, तो हम किसी भी लेटर को तशदीद कब देते हैं जब हमें सेम लेटर पहले सुकून में और फिर उसके बाद हरकत में मिले, तो हम उसको मर्ज कर देते हैं, यानी जो भी सेम लेटर होता है जैसे या है या बा है, कुरान मजीद में आपको जहां पर भी तशदीद मिलेगी तो तशदीद के अंदर में दो लेटर्स होते हैं जो कि पहला साकिन होता है और दूसरे के ऊपर वो हरकत होती है जो हमें नजर आ रही होती है। तो यहाँ पे भी हम फी को लिखेंगे और या के ऊपर सुकून देके उसके ऊपर फतहा दे देंगे, यानी यहाँ पर जो याए मुतकल्लम है वो हमारे पास फतहा की फॉर्म में आ रही है और जो फी की या है वो सुकून के साथ है और वो तो इसको हम जो प्रोनाउंस करेंगे वो फी या, ये जब याए मुतकल्लम फी के साथ में मिलके आएगी और फी ना, जैसे कुरान मजीद में हमें इसकी मिसाल मिलती है वल्लदीन जाहदू फीना के, और वो लोग जिन्होंने जिहाद किया हमारे रास्ते में अल्लाह ताला के रास्ते में, तो वहां पे हमें फीना की मिसाल मिलती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट लेटर है मिन, हम मिन को भी इसी तरह पूरे दमायर के साथ देखते हैं कि वो किस तरह आता है। मिन जब वाहिद मुज़क्कर गायब की दमीर से बिफोर आएगा तो उसमें हमारे पास सिर्फ दम्मा होगी, क्योंकि हमने वाहिद मुज़क्कर गायब की दमीर को जहाँ वजाहत के साथ देखा था वहां हमने ये चीज देखी थी कि जब इस दमीर से बिफोर सुकून आ जाए तो हम इसको सिर्फ दम्मा के साथ पढ़ते हैं। तो मिनहु, मिनहुमा, मिनहुम, मिनहा, मिनहुमा, मिनहुन्ना, मिनका, मिनकुमा, मिनकुम, मिनकी, मिनकुमा, मिनकुन्ना। अब जब याए मुतकल्लम के साथ मिन आएगा तो इसमें मिन और याए मुतकल्लम को चूंकि याए मुतकल्लम की डिमांड है कि उससे बिफोर जो भी लेटर हो उसको कसरा दी जाए, तो नून साकिन उसकी डिमांड पूरी नहीं करता और याए मुतकल्लम भी अपनी बात के ऊपर अड़ी हुई होती है, तो यहाँ पर एक तीसरा नून ऐड किया जाता है जो मिन और याए मुतकल्लम के सेंटर में होता है, जिसको ग्रामेटिकली हम नेम देते हैं नूने वकाया का, यानी वो बचाव करता है। तो असल में वो किस चीज से बचाव करता है, दोनों की हरकत की वजह से, कि या की हरकत और नून की हरकत अपनी अपनी जगह बाकी रहे, इस चीज के लिए जो थर्ड नून ऐड करते हैं हम इन दोनों के बीच में वो इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर पहले जैसे यहाँ पर भी वही तशदीद वाला रूल अप्लाई होगा कि मिन के बाद जब हम नून ऐड करेंगे तो वो नून कसरा के साथ होगा, और वो नून कसरा के साथ क्यों होगा, क्योंकि उससे नेक्स्ट में याए मुतकलिम है और याए मुतकलिम की डिमांड होती है कि उससे बिफोर वाले लेटर पे कसरा हो। तो यहाँ पर फिर हमारे पास दो नून इकट्ठे हो गए और जिसमें से पहला वाला नून साकिन है और दूसरे वाले नून के ऊपर जेर है, तो यहाँ पर भी हम इस नून को तशदीद के साथ लिखेंगे और मिन्नी बन जाएगा ये जो नून के साथ हमारी याए मुतकल्लम की कंस्ट्रक्शन है मुरक्कबे जारी की वो मिन्नी की सूरत में आएगी, और जो हमारे पास जमा मुतकल्लम का सीगा है ना का, उसके साथ जब मिन इस्तेमाल होगा तो वो मिन ना बन जाएगा, वहां पे भी हमारे पास तशदीद आएगी, इसलिए क्योंकि मिन और ना इसमें हमारे पास दो नून इकट्ठे हो रहे हैं, पहले वाला साकिन है और सेकेंड वन जो है वो फतहा के साथ है। तो यहाँ पे हम लिखने में एक नून लिखेंगे और उस नून पे तशदीद देंगे, क्योंकि तशदीद का जो असल में हमारे पास हर तशदीद वाले लेटर में दो वही लेटर्स होते हैं जिस लेटर के ऊपर तशदीद हो, जिसमें से पहला वाला साकिन होता है और दूसरे वाले लेटर के ऊपर वो हरकत होती है जो हमें नजर आ रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी मिन की डिस्कशन कंप्लीट होगी और मिन के बाद हमारे पास आन का लेटर आता है। तो आन में भी चूंकि नून साकिन आ रहा है तो इसका भी सेम टेबल और सेम जो कंडीशंस हैं वो वैसी ही होंगी जैसी मिन की हैं, सिर्फ हमने मीम की जगह आइन को यूज कर लेना है। आनहू सिर्फ दम्मा के साथ आएगा क्योंकि वाहिद मुज़क्कर गायब की दमीर से पहले हमें सुकून मिल रहा है, عنهما عنهم عنها عنهما عنهن عنك عنكما عنكم عنك عنكما عنكن عني. یہاں پہ بھی سیم ہمارے پاس نون کے اوپر تشدید آ رہی ہے کیونکہ ایک نون تو ان کا ہے اور سیکنڈ والا نون جو ہے وہ نون وقایہ، جیسے من میں آیا ویسے ہی ان میں آئے گا، اور پھر عنا جمع متکلم کا صیغہ. اور اس میں ہمیں مثال جیسے ملتی ہے احادیث میں بہت زیادہ کہ جب ہمارے پاس کسی صحابی کا نام آتا ہے تو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. کسی بھی جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا نام ہے تو عن ابی بکر الصدیقی رضی اللہ عنہ. اور جب کوئی ایسے صحابی ہوں جن میں باپ اور بیٹا دونوں مسلم ہوتے ہیں تو اس میں ہم جو صیغہ استعمال کرتے ہیں یا جو مرکب جاری کا ہم مرکب استعمال کرتے ہیں وہ عنہما ہے. جیسے ابن عمر کا جب نام آتا ہے کیونکہ اس میں عبداللہ ابن عمر ہوتے ہیں، حضرت عمر بھی اور ابن عمر دونوں مسلم ہیں، تو اس وجہ سے ہم وہاں پر جو استعمال کرتے ہیں وہ رضی اللہ عنہما استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو گئے. اور اسی طرح جب ہمارے پاس زیادہ صحابہ آ جاتے ہیں، دو سے زیادہ صحابہ آ جاتے ہیں، تو پھر ہم رضی اللہ عنہم ہم عنہم کا وہاں پر ہم کنسٹرکشن استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس لیٹر ہے وہ الا کا لیٹر ہے، جس کو ہم اس ان دمائیں کے ساتھ اٹیچ کر کے دیکھیں گے کہ ان کی حرکات کیسی ہوتی ہیں. الا میں ہمارے پاس لام کے بعد جیسے یا ہے تو اس کی کنسٹرکشن ہم یا کے ساتھ بنائیں گے. الا کی جب دمائر کے ساتھ آئے گا، نارملی تو ہم اس کو الا پڑھتے ہیں جب یہ کسی اسم سے بفور آتا ہے جیسے الس سمائی، لیکن جب یہ دمائر کے ساتھ میں مل کے آئے گا تو لام کے بعد میں ایک یا ساکن ہوگی اور اس کے بعد پھر کوئی بھی ضمیر جو ہماری یہ حالت جر والی دمائر ہیں ان میں سے کوئی بھی ضمیر اس کے ساتھ میں اٹیچ ہوگی. تو الیہی جیسے واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہے اس سے بفور اگر یا ساکن آ جائے تو ہم اس کو کسرہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، سوری ہاں جی یا ساکن آ جائے تو ہم اس کو صرف کسرہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم نے فی ہی میں دیکھا تھا کہ صرف کسرہ تھی، تو الیہ ہی میں بھی واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہے وہ صرف کسرہ کے ساتھ آئے گی. پھر الیہما الیہم الیہا الیہما الیہن، یہاں پہ بھی ہم نے جو رول ہما ہم اور ہننا کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہننا کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب ان سے بفور یا ساکن آ جاتی ہے تو ہم ان کو ہما ہم اور ہننا کر کے پڑھتے ہیں. پھر الیکا الیکما الیکم الیکی الیکما الیکن. اور اب یا متکلم میں الی جیسے یا ساکن آ رہی ہے اور پھر اس کے بعد یا متکلم، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یا متکلم یا تو سکون کے ساتھ ہوتی ہے اور یا زبر کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہاں پہ پھر ہمارے پاس یا کے اوپر تشدید آ جائے گی کیونکہ فرسٹ یا ساکن ہے اور سیکنڈ یا متکلم فتحہ کے ساتھ یہاں پر آئے گی، الیہ اور الینا. پھر اس کے بعد ہمارا جو لاسٹ لیٹر ہے اس کو اگر ہم ان دمائر کے ساتھ اٹیچ کریں تو وہ بالکل سیم اس کی سچویشن رہے گی الا والی ہی، کیونکہ الا میں بھی ہمارے پاس جو لاسٹ لیٹر ہے وہ یا ساکن ہے اور الا میں بھی ہمارے پاس جب یہ ضمائر کے ساتھ مل کے آ رہا ہے تو الا میں لام کے بعد میں یا ساکن ہوگی. علیہ علیہما علیہم علیہا علیہما علیہن. جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہمیں ایک مرکب جاری کی کنسٹرکشن ملتی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو یہاں پر جو ہمارے پاس علیہم کی کنسٹرکشن ہے وہ استعمال ہو رہی ہے کہ علا کے ساتھ ہم ہم مل کے آ رہا ہے. پھر علیکا علیکما علیکم और आलैया, यहाँ पे फिर हमारे पास सेम इलैया और आलैया तशदीद के साथ या आएगा, और आलैना और आलैकुम की जो कंस्ट्रक्शन है ये हमें एक हदीस में भी मिलती है, अलैकुम बिस्सुन्नति व सुन्नतिल खुलफा इर्राशिदीन अल महदीयीन, के अलैकुम यहाँ पे हमें इस्तेमाल होता हुआ मिल रहा है, मरकबे जारी। हम कुरान मजीद पर से देख लेते हैं कि जो ये वाले लेटर्स हैं ये जब दमाए के साथ आते हैं तो जैसे हमने पहले देखा था जब इस्म के साथ आएंगे, इस्म जाहिर के साथ जब यही सारे हुरूफ आएंगे और फिर मुरकबे जारी की जो कंस्ट्रक्शन बनेगी तो वो कुरान मजीद में कैसे थे, और अभी हम इन दमाए के साथ स्पेसिफिकली देखेंगे। तो इसमें आप 17th पारा स्टार्ट से निकालें, सूरतुल अंबिया। सेवनटीन्थ पारा सूरतुल अंबिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। इसमें जो हमें हरफे जार की का इस्तेमाल दमीर के साथ सबसे पहली एग्जांपल इसमें हमें मिल रही है आय नंबर 7 में, वमा अरसलना कबलक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, इलैहिम इला के साथ हम का इस्तेमाल मिल रहा है हमें, नूही इलैहिम उनकी तरफ, हमने वही की उनकी तरफ। फिर इसके बाद आया नंबर 10 को आप देखें, लकद अंजलना इलैकुम, यहाँ पे हमें इला की जो दमीर है वो कुम के साथ मिल रही है, किताबन फी ही जिक्रुकुम, फी ही उसमें, यहाँ पे हमें जो वाहिद मुजक्कर गायब की दमीर है वो सिर्फ कसरा के साथ मिल रही है क्योंकि उससे पहले या साकिन है। ठीक, इसके बाद अब आ जाए आ नंबर 12 में, फलम्मा अहसु बसना इदा हुम मिन्हा, मिन्हा मिन की दमीर हा के साथ, फिर आया नंबर 13 में हमें एक मिसाल मिलती है, ला तरकुदू वर्जिउ इला मा उत्रिफ्तुम फीही, जिसमें तुमने कमी की उसमें फी ही। फिर हमारे पास आया नंबर 18 में एक मिसाल है, बल नकदिफु बिल हक्की अलल बातिल फयदमहु अलल बातिल, ये भी हमारे पास मुरक्कबे जारी है लेकिन ये इस्म जाहिर के साथ है, फयदमहु फइजा हुवा ज़ाहिकुन वलकुम, लकुम हमारे पास जो मुरक्कबे जारी की एग्जाम्पल आ रही है वो हमें इस्म दमीर के साथ मिल रही है। इसके बाद आय नंबर 19 के बिल्कुल स्टार्ट में, वलहू मुरक्कबे जारी दमीर के साथ, और इसके बाद आप देखें आय नंबर 29 में, वमन यकुल मिनहुम, मिनहुम ये भी हमारे पास मुरक्कबे जारी दमीर के साथ इसकी कंस्ट्रक्शन हमें मिल रही है। तो अब आप लोगों का जो होमवर्क है वो है कि आपने मुरक्कबे जारी की 10 एग्जांपल्स लिखनी है कुरान मजीद में से फाइंड आउट करके, जिसमें से 5 आपकी इस्म जाहिर के साथ होंगी और 5 आपकी इस्म दमीर के साथ, यानी 5 ऐसी मिसालें लिखनी है जिसमें आपके पास जो मुरक्कबे जारी है वो इस्म के साथ आए किसी भी, जैसे मिनस समाई या इलस समाई जो इस्म जाहिर है उसके साथ आए, और फिर जो 5 एग्जाम्पल्स हैं वो जैसे हमने टेबल में अभी सारी प्रैक्टिस की है उस तरीके से मिले। तो इस तरह टोटल आपकी 10 एग्जाम्पल्स होंगी जो होमवर्क में है, और ये जो टेबल मैंने आपको जैसे अभी सारा समझाया है तो ये सारे टेबल्स आपके बुक के अंदर रिटन फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, तो यानी आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि अगर किसी से कोई राइटिंग मिस होगी तो वो अपनी किताब में से देख के तो उसको फॉलो कर लेता है। असल चीज ये है कि हमें रीजंस पता होनी चाहिए, कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर कोई हरकत चेंज हो रही है तो वो क्यों हो रही है। यहीं पे हम अपनी क्लास का अख्तिताम करते हैं। سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.